नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी चहेती वीना से एक बार फिर से हाजिर हूँ। आपने मेरी पिछली कहानी पायल की अतृप्त प्यास को बहुत प्यार दिया। आपको खत पढ़कर यकीन जानिए मैंने भी उंगली कर ली, लेकिन ये नई कहानी मेरी एक पुरानी ही कहानी है, होली चोली और हमजोली के बाद की। जैसा कि मैंने अपनी उस कहानी में लिखा कि हमारे ऑफिस के लर्निंग इवेंट हर 6 महीने में हुआ करते थे। वार्षिक इवेंट होने से पहले सभी की पदोन्नति भी घोषित की जाती थी। फिर वार्षिक इवेंट में नए पदों पर नियुक्त हुए लोगों का जाना अनिवार्य होता था, क्योंकि इस इवेंट का 50% खर्च नए पदों पर आए लोग उठाते थे, तो प्रमोशन पार्टी भी साथ में निपट जाती थी। जैसे कि मैंने पिछली कहानी में बताया था कि अपने अर्धवार्षिक इवेंट के बाद दीपक और मैं धीरज की रंडी बन चुकी थी। रोज़ दीपक की गाड़ी में उसका लौड़ा चूसना मेरी आदत हो चुकी थी। बाकी लड़कियों की चुदाई करते रहने के बावजूद दीपक मुझे हफ्ते में 4 बार तो चूद ही लेता था। उसको मेरी गांड मारना बहुत पसंद था। अब तक मेरी उसे कल्पना माने या सच, मैं तो यही मानती थी कि मेरी गांड की सील उन्होंने ही तोड़ी थी, हालांकि उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। होली पर सामूहिक चुदाई के प्रोग्राम को अगर वो मेरी सोच थी या सपना, तो याद करने भर से मैं आज भी गीली हो उठती हूँ। रह रहकर मैं सोचती कि उनकी पत्नी कैसे चुद पाती होंगी, तो परेशान हो जाती होंगी। धीरज भी कभी कभी मुझे वीकेंड पर होटल ले जाता था। कभी कभी दीपक भी धीरज के साथ आ जाता था और थ्रीसम होता था। एक बार धीरज ने मुझे होटल बुलाया तो क्या देखती हूँ, कमरे में दीपक और धीरज के साथ उनके 4 दोस्त भी हैं। कैसे उन सब ने मिलकर मेरा दमदार बैंड बजाया पूरी रात, ये कहानी फिर कभी। वो मेरी परीक्षा थी, कैसे आपको इस कहानी के बारे में पता चलेगा। मैं रोशनी को दिल में पसंद करने लगी थी। उसकी चूत के होठों की प्यास बुझाई नहीं बुझती थी। सुबह सबके आने से पहले मैं और रोशनी बाथरूम में मिलती और एक दूसरे को चूमती हुई उंगली करती। कहानी के अगले भाग में पढ़िए कि किस तरह मैं वार्षिक लर्निंग इवेंट में कई मर्दों की भोग और वासना की वस्तु बनी। रोशनी जो पदोन्नति चाहती थी उसका क्या हुआ। दीपक और धीरज ने मुझे इस्तेमाल कर खुद की तरक्की का रास्ता कैसे साफ किया। उस दिन प्रमोशन लिस्ट अनाउंस होने वाली थी। रोशनी सुबह से बहुत उत्तेजित थी। उसे इस टीम में काम करते हुए 3 साल हो चुके थे और पिछले 2.5 सालों से दीपक और धीरज से चुत्ती आ रही थी। ऐसे में तरक्की की इच्छा होना स्वाभाविक था। दोपहर 3 बजे ईमेल आया। हमारी टीम में प्रमोशन हुए लोगों में ज़्यादातर मर्द थे, क्योंकि लड़कियों की तादाद वैसे भी कम थी। धीरज मैनेजर से सीनियर मैनेजर बन गया। बहुत से लोग थे जो एनालिस्ट से सीनियर एनालिस्ट बने। 6 लोग थे जो सीनियर एनालिस्ट से सहायक मैनेजर बने। 2 लड़कियां भी शामिल थी। दीपक अभी भी अधीक्षक ही था और उनका प्रमोशन नहीं हुआ था, पर धीरज की तरह बाकी के 4 नए मैनेजर को अपने साथ मिलाना और अपने वासनायुक्त कारनामों में शामिल करना दीपक के लिए टेढ़ी खीर थी। रोशनी ईमेल पढ़कर काफ़ी गुस्सा हुई। इन सब भावों को एक साथ छुपा रही थी, जैसे उसने जिस्म का इस्तेमाल किया और फेंक दिया गया हो। मैं रोशनी को बाथरूम ले गई। पहले ही लड़कियां प्रमोशन और वेतन में हुई वृद्धि की बातें कर रही थी, इसलिए मैं रोशनी के साथ थोड़ी दूरी बनाए रखी। मैं चाहती तो थी उसे गले लगाऊं, उसका दर्द बांटूं, उसकी भड़ास निकालूं, पर सबके रहते कर पाना मुश्किल था। तभी दीपक का मैसेज आया, इस वक्त मेरे कैबिन में आओ। मैंने रोशनी को अकेले बाथरूम में छोड़कर नहीं जाना था, तो मैंने मैसेज को नज़रअंदाज कर दिया। थोड़ी देर में एक लड़की मुझे ढूंढते हुए बाथरूम आई और बोली, वीनस तुझे दीपक सर बुला रही हैं। ठीक है, उन्हें बोल मैं आ रही हूँ, मैंने जवाब दिया। अब मेरा जाना ज़रूरी हो गया था। रोशनी ने खुद को टॉयलेट में बंद कर लिया था और दरवाज़ा भी नहीं खोल रही थी। बाथरूम में सीन बनाने की बजाय मुझे दीपक सर के पास जाना ठीक लगा। उनके कैबिन का दरवाज़ा खटखटा, क्योंकि धीरज उनके कैबिन में बैठे थे। दीपक सर का कैबिन काफ़ी बड़ा था। एक तरफ सोफ़ा और टेबल थी, दूसरी ओर उनके कोट टांगने का स्टैंड। उनके रूम में कॉन्फ्रेंस से कनेक्ट करने को एक बड़ा मॉनिटर फ्लैट टीवी भी था। उनके बैठने की कुर्सी के दाहिने ओर एक सफ़ेद बोर्ड जिस पर लिखकर बड़ी बड़ी मीटिंग में स्ट्रेटजी तय होती थी। उनकी टेबल काफ़ी बड़ी थी और कुर्सी लेदर की। कुर्सी के पीछे खूबसूरत लड़की की पेंटिंग थी जो अधरंगी थी। टेबल के बाएं और दाएं छोर पर लॉक वाले ड्रॉर थे। अंदर घुसने और दरवाजे वाली दीवार भी केवल शीशे की थी। दरवाजे के दोनों तरफ बड़े बड़े 2 लकड़ी के कैबिनेट थे जो शीशे की दीवार के कुछ भी दिखने नहीं देते थे। शीशे के दरवाजे पर ब्लाइंड्स का इस्तेमाल था। किसी गोपनीय मीटिंग या डू नॉट डिस्टर्ब के लिए वो अक्सर दरवाजे के ब्लाइंड बंद कर देते थे। केबिन एक कमरे में तब्दील हो जाता था। उसे अंदर बुलाने पर उन्होंने धीरज को ब्लाइंड बंद करने का इशारा किया। अरे वीनस, आओ बैठो, कब से ढूंढ रहा हूँ। फ़ोन पर मैसेज भी किया। जी, वो वॉशरूम में थी। चलो कोई बात नहीं, तुमने धीरज को मुबारकबाद दी, आज सीनियर मैनेजर बन गए हैं। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अरे यूँ सूखे सूखे बधाई दोगी क्या, धीरज ने शरारती नज़रों से पूछा और आगे बढ़कर मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए। मेरे लिए धीरज और दीपक को चूमना चाटना, उनके द्वारा मेरे मसले जाना आम बात थी। लिफ्ट में मौका देखा केले पाकर धीरज लिफ्ट को इमरजेंसी बटन दबाकर रोक देते और मेरे चूचे निकालकर चूसा करते थे। दीपक भी कुछ कम नहीं थे। जब काम बहुत ज़्यादा होता तो वो बिल्डिंग के नीचे जाकर सिगरेट पीने की बजाय बिल्डिंग की सीढ़ियों में सिगरेट पीते। ऐसे में कई बार आते जाते वो मुझे रोककर सबसे ऊपर की मंजिल ऊपर ले जाकर एक त्वरित चुदाई कर लेते। शाम को सबके जाने के बाद धीरज मुझे दीपक के केबिन में झुकाकर चौदा करते थे। दीपक के केबिन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ मेरी चूत का रस न गिरा हो। कई बार तो ऐसा होता था कि दीपक की कॉन्फ्रेंस हॉल में ज़रूरी मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस होती और मैं लकड़ी के मेज के नीचे बैठी बैठी उनका लंड चूसती रहती। धीरज भी मुझे फ़ोन पर मैसेज करके दफ्तर या अंधेरे सुनसान कोनों में बुलाते। तो मेरे लिए उन दोनों से चुदना, मेरे चूचे पेश करना ऐसा था जैसे मैं उनके तीन वक्त का भोजन हूँ। सेक्स विद बॉस मेरी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन चुका था। सुबह सुबह आते ही सबसे पहले मैं दीपक के केबिन में जाती हूँ, पैंट स्कर्ट जो भी पहना था खोल कर उनकी टेबल के आगे खड़ी हो जाती। अपना लोड़ा चुसवा कर वो दिन की शुरुआत करते, अपना लोड़ा दोबारा चुसवा कर वो शाम का अंत करते। गाड़ी में बैठे हुए धुएं के कश लगाते हुए मैं चुसवाना पसंद था। वे कश जोर से खींचते, मेरा चेहरा हाथ में लेते और फिर कस कर चूमते अपने कश का सारा धुआं मेरे मुँह में छोड़ देते। उन दोनों का लंड का टिश्यू पेपर बन चुकी थी मैं। खैर, धीरज को मुझे चूमता देख दीपक भी अपनी कुर्सी से उठकर हमारे पास आ खड़े हुए। उन्होंने मेरी कमीज के बटन खोल दिए और चूचे ब्रा से खींचकर निकाल लिए, जैसे कि मेरे चूचों को धीरज की चुसाई के लिए तैयार कर रहे हों। उन्होंने मेरा बायां हाथ लिया और अपनी पैंट की जिप खोलकर उसमें डाल दिया। धीरज ने चुंबन छोड़ मेरे चूचे चूसना पसंद किया। उधर दीपक ने भी अपना मोटा लोड़ा बाहर निकाल दिया था। मैंने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया और दीपक का लंड चूसने लगी। धीरज अभी भी मेरे चूचे चूस रहा था। तभी दीपक के केबिन का फ़ोन बजा। दीपक ने मुझे फ़ोन का रिसीवर उठाकर उनके हाथ में देने को कहा। मैंने अपने एक हाथ से फ़ोन उठाकर बढ़ा दिया। दीपक लंड चुसवाते हुए फ़ोन पर बात करने लगे, थोड़ा थोड़ा बीच में हंसी मजाक भी करते बात करने वाले से, फिर कुछ काम की बात करने लगे। अंग्रेज़ी में कहा, मुझे 5 मिनट तो मैं अभी ज्वाइन करता हूँ। ये सब सुनकर धीरज के कान खड़े हो गए। चूचे छोड़कर बोले, क्या हुआ। कुछ नहीं, एक मीटिंग है, ज़रूरी है, दीपक ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, मैं बाद में आता हूँ, चलो वीनस। अरे नहीं, वीनस को यहीं रहने दो, अभी चुसाई ख़त्म कहाँ हुई है। तुम्हें एक बार फिर से मुबारकबाद। दीपक इतनी आसानी से मुझे जाने नहीं देते थे। मैं कैबिनेट के पास जाकर खड़ी हो गई ताकि खुलते दरवाजे से कुछ ना दिखे। अब दीपक ने दरवाज़ा बंद कर अंदर से लॉक कर लिया। टेबल के नीचे उनके पाँव के पास बैठने को कहा। दीपक ने अपना लंड पैंट में से निकाला और फिर मैं उसे चूसने लगी। तब तक दीपक ने मीटिंग कंप्यूटर से ज्वाइन कर ली थी। मैं नीचे बैठी उनकी चुसाई कर रही थी। अब उनका लोड़ा तन चुका था। अब मेरा भी मन कर रहा था कि मैं उनके लोड़े पर बैठकर कूद जाऊं, उनके मीटिंग में आए लोगों को अपनी जवानी के खेल दिखाऊं। मीटिंग 15-20 मिनट में ख़त्म हो गई। ख़त्म होते ही दीपक ने मेरी स्कर्ट खींचकर ऊपर उठा दी और टेबल पर झुकाया और मेरी गांड को मारने लगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ये लंबी कहानी है, कई भागों में समाप्त होगी। बाकी का अगली बार। एंजॉय कीजिए।